ऑस्ट्रेलिया की ग्रीन्स पार्टी के न्यू साउथ वेल्स के एमएलसी डेविड शुब्रिज ने राज्य की संसद के ऊपरी सदन में एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें भारत के नागरिकता संशोधन कानून की निंदा की गई है। भारतीय समुदाय के काफी लोग इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं ब्रिस्बेन स्थित इंस्टीट्यूट फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया एंगेजमेंट के संस्थापक डॉक्टर आशुतोष मिश्रा से, जो भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों के विशेषज्ञ भी हैं। उनसे समझते हैं कि इस प्रस्ताव की अहमियत क्या है। डॉक्टर मिश्रा, आपका स्वागत है SBS हिंदी पर।
धन्यवाद विवेक।
आपने सुना होगा सर कि एक प्रस्ताव पेश किया गया है न्यू साउथ वेल्स पार्लियामेंट में, जिसमें बात की गई है नागरिकता संशोधन कानून के बारे में, जो भारत में काफी विवादों में रहा था और काफी आंदोलन भी हुए उसे लेकर, न सिर्फ भारत में बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी काफी विरोध में और समर्थन में प्रदर्शन हुए। तो
जी,
उस प्रस्ताव का न्यू साउथ वेल्स के पार्लियामेंट में आना और उस पर बात होना, उसके क्या मायने हैं, अगर आप हमें समझा सकें तो।
देखिए, अगर एक टूक में बात, दो टूक बात में अगर करूं तो मेरे हिसाब से उसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि ये जो प्रस्ताव वो लेकर के आए थे ग्रीन्स न्यू साउथ वेल्स पार्लियामेंट में, बड़ा ही हास्यास्पद है। और जो आधारभूत तथ्य और जो हमारा इतिहास जो कश्मीर का रहा है उससे एकदम परे है ये। और ये प्रस्ताव जिन जिन लोगों ने पारित किया और जिन जिन लोगों ने इनका जो इसका समर्थन किया है, चाहे वो संसद के अंदर रहा हो, चाहे वो बाहर रहे बैठे आपके विशेषज्ञ हों जो खुद को अपने को कश्मीर का विशेषज्ञ या भारत का विशेषज्ञ बताते हैं, मेरे हिसाब से ये प्रस्ताव बड़ा ही हास्यास्पद है और ये उनकी बड़ी ही हल्की समझ को दर्शित करता है। और उसका कारण ये है कि कई पहलुओं का इन्होंने जिक्र किया था कि प्रजातंत्र का, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि प्रजातंत्र का, मानव अधिकारों का वहां पे हनन हो रहा है और वहां पे संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका जो है सदैव से जो पाकिस्तान बात करता चला आया है उसको जो है उनको जो है लागू करना चाहिए, यूएन के जो रेजोल्यूशंस थे, जो प्रस्ताव थे, उनको लागू किया जाना चाहिए। तो ये उनके कुछ आधारभूत उनके जो प्रस्ताव के जो कुछ हिस्से थे ये उसको इंगित करते थे। लेकिन अगर आप कश्मीर और भारत के अगर इतिहास को देखिएगा, आपको तब समझ में आएगा कि ये प्रस्ताव किसी भी तरीके से तथ्यों पे एकदम खरा नहीं उतरता है। अब उसका मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूँ। जैसे कि कश्मीर की अगर बात होती है तो पाकिस्तान की जो कश्मीर की जो नीति है वो दो पिलर्स पे टिकी है। एक तो थी जो प्रॉक्सी वॉर उन्होंने कश्मीर में पिछले जो है 20 साल से 30 साल से उन्होंने चला करके रखी है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जिसको हम भारत में बहुत लोग बोलते हैं, और दूसरा है वो यूएन रेजोल्यूशंस की हमेशा बात करते हैं। तो पहले अगर आप पिलर को लेकर के चलिए तो कश्मीर में आप देखेंगे कि सन 1990 से अब तक 40,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। भारत अकेला नहीं है पाकिस्तान को फटकारने वाला, अमेरिका रहा, सऊदी अरेबिया रहा, रशिया रहा, जापान रहा, ये सब ने जो भारत का समर्थन किया था इस उग्रवाद के खिलाफ, जब पुलवामा का आपको याद होगा जब अटैक हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा समर्थन किया था।
जी, लेकिन डॉक्टर साहब आपने, माफ कीजिए मैं आपको रोक रहा हूँ, लेकिन अपने प्रस्ताव में जो डेविड शुब्रिज ने कहा है वो ये बात है कि भारत में यदि मानवाधिकारों का हनन होता है तो उस पर ऑस्ट्रेलिया को बोलना चाहिए, क्या इस बात पर आपत्ति हो सकती है?
पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि ये मानवाधिकार जो हनन ये बोल रहे हैं, ये किस चीज को ये मानवाधिकार हनन मानते हैं? अगर आप कश्मीर को एक एक नॉर्मल क्षेत्र या रियासत के तरीके से अगर आप देखते हैं कि जैसा आप समझते हैं ऑस्ट्रेलिया है या कोई और भी देश है, तो ये मेरे साथ नाइंसाफी होगी कश्मीर के साथ में, क्योंकि कश्मीर में जो सूरत हाल पिछले आप देख लीजिए 30 साल में रहे हैं, उस हिसाब से अगर हम एक आम तरीके से या एक साधारण तरीके से अगर हम वहां चीजों को देखें और हम ये वहां पे हम एक्सपेक्ट करें कि वहां पे जो मानवाधिकार की जो ये बातें करते हैं, क्योंकि वहां पे मानवाधिकार का देखिए दो तरीके से ताली एक हाथ से नहीं बजती है। वहां पे जैसा मैंने आपको बताया कि मानवाधिकार की बात करने वालों को इस बात पे भी चर्चा करनी पड़ेगी कि पिछले 30 साल से जो उग्रवाद वहां पे चलता है जिसकी वजह से वहां पे आपको फोर्सेस लगाई गई है, ये दुनिया के सामने जग जाहिर, उसी चीज को मैं आपके सामने रख रहा था। और वहां पे अगर आप अगर दूसरी बात में अगर ये भी मैं बोलना चाहता हूँ कि शायद इन लोगों को ये बात मालूम नहीं है, 1951 से लेकर के आज तक कश्मीर में आपके जो चुनाव होते चले आ रहे हैं वो तो ब्लॉक लेवल पे हैं, विलेज लेवल पे हैं, आपके फिर असेंबली लेवल पे हैं, फिर आपके संसद के स्तर पे रहे हैं। तो ये आपके जो ये जो चुनाव रहे हैं ये उन्होंने प्रजातंत्र को वहां पे बहुत ही प्रगाढ़ किया, और इसका मतलब ये है कि अब दूर दूर तक गांव दूर दराज में प्रजातंत्र प्रगाढ़ हो रहा है। और जहां तक ये मानवाधिकार की ये बात करते हैं तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, बैरोनेस एमा निकलसन जो विंटरबर्न की थी, उन्होंने यूरोपियन यूनियन में यूरोपियन पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट रखी थी, कश्मीर प्रेजेंट सिचुएशन एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। उन्होंने इस बात पे लिखा था कि भारत बेहद हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा धर्म निरपेक्ष प्रजातंत्र है और सारे स्ट्रक्चर वहां पे जो है लागू किए जाते हैं, और जबकि पाकिस्तान में अगर आप जाएंगे तो पाकिस्तान में एकदम ठीक उल्टा है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको कहते हैं, उन्होंने इसको इसको बताया इस बात को। तो ये इस तरीके से अगर भारत की अगर ये निंदा करते मानकर तो मेरे ख्याल से ये सत्यता से ही बहुत ही परे है। भारत तो वहां पे चाहता है वहां पे एक बहाल हो हर तरीके से। अभी तो आप देख लें कि जैसे इमरान खान ने बोला कि कश्मीर तो हमारा हिस्सा है, तो बल्कि वो खुद ही नहीं चाहते हैं कि वहां के लोगों को यू नो चैन से जीने को मिले, क्योंकि वो तो उन्होंने आज दिखा दिया कि कश्मीर हमारा पाकिस्तान का हिस्सा है। और ये बात जो है लोग यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बैठे लोग इस चीज को जो है भूल जाते हैं कि जब वो मानवाधिकार की बातें करते हैं, कि भारत में आप जब जब आप देख लीजिए कि भारत ने किसी भी तरीके का पीस प्रस्ताव रखा सामने की चीजें जो शांतिपूर्ण तंत्र से आगे बढ़े, तब तक भारत के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ है। तो ऐसे सूरत हाल में सिर्फ एक चीज को लेना कि वहां पे मानवाधिकार हनन हो रहा है, मेरे ख्याल से ये पूरे ही मुद्दे की एक बहुत ही प्रगाढ़ समझ नहीं होगी। और उसी पे मैं बार बार ये बात बताना चाहता हूँ कि सिर्फ आप एक पक्ष को लेकर के आप भारत की भर्त्सना नहीं कर सकते, आपको पूरे पहलू को समुचित तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि वहां का इतिहास क्या रहा है, उग्रवादी वहां कैसे वहां पे एक्टिव रहते हैं, वहां के जो सेपरेटिस्ट हुर्रियत है उनका क्या किस तरीके से रोल रहता है।
आपको लगता है कि भारत ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के जो एक्सपर्ट्स इस बारे में बोलते हैं उनमें इस मुद्दे को लेकर पूरी समझ नहीं है?
जी मैं पूरी तरीके से मानता हूँ, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि उन लोगों ने आकर के अभी यूएन रेजोल्यूशन की बात की थी कि यूएन रेजोल्यूशन को आप इंप्लीमेंट कीजिए और इस तरीके से भारत का मुद्दा ये कश्मीर का मुद्दा सुलझाया जा सकता है। पहली बात तो ये कि कश्मीर का मुद्दा जो है सुलझ चुका था 1947 में ही, जब कश्मीर जो भारत का अंग बन गया था, ठीक है। और आर्टिकल जो 370 जो था वो एक बड़ा ही टेम्पररी प्रोविजन था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसको जो है अभी जो उसके कुछ अनुच्छेदों को जो उसमें से हटा दिया गया है। तो इसलिए भारत की अगर आप भर्त्सना कर रहे हैं तो इस इतिहास को समझें, और यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं जो ये यूएन रेजोल्यूशन की बात करते हैं, दुनिया भर के फॉर्मूले बता रहे हैं कि इसको ऐसे हल कर दो वैसे हल कर दो, इनकी समझ इतनी हल्की है, मैं तो बोलूंगा भाई आप थोड़ी जो टेक्निकलिटीज हैं जो यूएन रेजोल्यूशन की और इतिहास की, थोड़ा उस पर और गौर फरमाएं, थोड़ा उसके बारे में और जानकारी हासिल करें इस तरीके के सोल्यूशन देने के पहले।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिश्रा ये जानकारी देने के लिए, समय देने के लिए, आपका बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद विवेक।